اصل میں کسی چیز سے نفع حاصل ہونے کی اصولوں میں سے یہ ہے کہ اس کے جو طریقے ہیں، اس کے جو آداب ہیں، اس کے جو قاعدے ہیں، ان کو ملحوظ رکھنا، تو اس سے پھر فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر چیز کا اصول ہے، دعوت کا بھی اصول ہے، انفرادی کا بھی ہے، اجتماعی کا بھی ہے، عمومی کا بھی ہے، خصوصی کا بھی ہے۔ چونکہ اصل دعوت کے لیے نکلے، اپنی اصلاح کو فوکس کر کے، نیت اپنی اصلاح کی کر کے کر رہے ہیں دعوت کا کام، دعوت کے میدان میں اپنی اصلاح کرنا ہے، تو یہ دعوت عمومی بھی ہوتی ہے، خصوصی بھی ہوتی ہے، اور انفرادی بھی ہوتی ہے، اور اجتماعی بھی ہوتی ہے۔ تعلیم بھی عمومی ہوتی ہے، خصوصی ہوتی ہے، انفرادی بھی ہوتی ہے، اجتماعی بھی ہوتی ہے۔ خدمت بھی عمومی بھی ہوتی ہے، خصوصی بھی ہوتی ہے، انفرادی بھی ہوتی ہے، اجتماعی بھی ہوتی ہے۔ عبادت بھی انفرادی بھی ہوتی ہے، اجتماعی بھی ہوتی ہے، خصوصی بھی ہوتی ہے، عمومی بھی ہوتی ہے۔ چار ہی کام ہوتے ہیں نا، دعوت کا کام ہے، خدمت کا کام ہے، تعلیم و تعلم کا کام ہے، اور عبادت کا کام ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے پہلی چیز اللہ کے راستے میں ہونے کا بار بار دھیان، کہ ہم اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے کی فضیلت، اللہ کے راستے کی اہمیت، اللہ کے راستے کی احتیاط، اللہ کے راستے کا ادب، اللہ کے راستے کا لحاظ۔ چونکہ اس کو جتنا تازہ کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ جو ہے نا اس میں کیے جانے والے کاموں کا اثر بھی پڑتا ہے۔ دینی مدرسوں میں ہم اللہ کے راستے میں ہیں، بلکہ بار بار ان کو پڑھایا نہیں جاتا، مدرسے میں جا کے رہ جاتے وہ لوگ، صبح سے شام تک اللہ کے راستے میں ہیں، بلکہ 10 مرتبہ نہیں آتا ان کے کان پہ، حالانکہ اللہ کے راستے میں ہی ہوتے ہیں۔ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، حدیث شریف ہے، جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ مگر وہاں پہ اللہ کے راستے میں ہونے کا دھیان بار بار نہیں لایا جاتا، اس وجہ سے آدمی ایک نارمل حالت میں جینے شروع کر دیتا، برسوں گزار دیتا ہے، تأثر نہیں لیتا۔ اور یہی جماعت والے جو ہے نا، صبح سے لے کے شام تک 10 مرتبہ اللہ کا راستہ بول کے اس کو تازہ کرتے رہتے ہیں، اس کے بھی دماغ میں آ جاتا ہے، ارے بھائی میں اللہ کے راستے میں ہوں، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کا عمل کا یہ درجہ ہے، اس میں ایسی احتیاط سے رہنا پڑتا ہے، بہت کام کی چیز ہے یہ۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ خروج کے وقت زمانے میں اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں ہونے کا دھیان، اور جو کام کرنے ہیں ان کاموں کے جو اصول ضابطے ہیں ان کا مذاکرہ کرتے رہنا۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے ہر چیز کا مذاکرہ ہوتا تھا، افضل شریف صاحب بول کے ایک ملے پلے میں ہوا کرتے تھے، مذاکروں کے ماہر تھے بہت، وہ حضرت نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بھی جماعت آتی تھی اس کے مذاکروں کا ذمہ دار افضل شریف صاحب کو بنا دیتے تھے۔ تو افضل شریف صاحب مذاکرہ کرتے تھے، جماعتیں جو ہے نا سب سے زیادہ جو تعریف کرتی تھیں یہاں سے جا کے، افضل شریف صاحب کے مذاکروں کی کرتی تھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں ہر عمل کا مذاکرہ الگ سے لے کے بیٹھتے تھے، حتیٰ کہ آپ گشت میں جا رہے ہیں، گشت میں آپ جس سے ملاقات کریں گے اسے کیا بات کریں گے، اس کا مذاکرہ کرتے تھے وہ۔ چونکہ ہم گشت میں جاتے تو ہیں، لیکن کہاں سے شروع کرنا ہے، بات کیسے کرنا ہے، اس کا کوئی مذاکرہ نہیں کر پاتے ہوں، کہاں سے شروع کر کیا بولنا ہے اس کو، اپنی جھجک بھی دور کرنے کا ہے، اس کی جھجک بھی دور کرنے کا ہے، بات بھی شروع ہو جانا ہے صحیح، چونکہ بات صحیح شروع نہیں ہوئی تو بھی گڑبڑ ہو جاتی نا، آدمی اسی پریشانی میں رہتا ہے کہ شروع کروں کہاں سے، کیا بولنا ہے اس کو، ایک دم السلام علیکم وعلیکم السلام بولتے اگر اس کے ساتھ دعوت دینے کی بات کر دی نا، تو سامنے والا بات کو چڑ جاتا، وہ دیکھنا پڑتا ہے اس کا موڈ کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے۔ اسی وجہ سے رہبر کا کام اس کا اچھا تعارف کرا دینے کا ہوتا ہے، ہم آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، ملاقات سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دیکھو کتنا اچھا عمل ہو گیا۔ ملاقات بھی ایک کام ہے، ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنا بھی ایک کام ہے، یہ شرف حاصل ہو گیا آپ سے مل کے۔ اور اگر کوئی دینی مذاکرہ ہو جائے اس کے ساتھ میں ایک دوسرے کو، تو اس سے اچھی کیا بات ہے، اللہ پاک نے ہمیں بھی مسلمان بنایا، آپ کو بھی مسلمان بنایا۔ جو آدمی مسلمان ہوتا ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، کلمے میں ہم اللہ کی بندگی کا وعدہ کیے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا وعدہ کیے ہیں. اب یہ وعدے کو نبھا رہے ہیں نہیں نبھا رہے ہیں؟ اگر ہم نبھا لیں گے تو اللہ راضی ہو جائیں گے، قبر ہماری صحیح ہو جائے گی، آخرت میں لے کے چلے آنا ادھر سے اللہ کی عظمت بڑائی، اور پھر آخرت موت کا دھیان، فکر آخرت کی طرف رجحان. مذاکرے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے شروع کرنا، کیسے شروع کرنا، کیا بولنا، کیا نہیں بولنا، تھوڑا سا ان چیزوں کا ہوتا ہے. ایسے خصوصی ملاقات ہوتی ہے، عمومی ملاقات ہوتی ہے، خصوصی ملاقات ہوتی ہے. ایک عام گشت ہے، ایک خاص گشت ہے. خصوصی ملاقات میں پھر دنیاوی خاص لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، دینی خاص لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. تو دینی خاص لوگوں سے جا کے کیا بولنا ہے، اس کا اگر ڈھنگ نہیں رہا بہت زیادہ سبکی ہوتی ہے، بدنامی ہوتی ہے. اپن وہاں سے کوئی بے اصولی کر دیا نا تو انہیں 10 جگہ تقریروں میں بولتا، جماعت آئی تھی ایسی بےہودہ بات کر کے گئی بول، لوگوں کو ایسا رہتا ہے دیکھا ہم اس واسطے بولتے ہیں ان کو. خاص آدمی سے، خاص دینی خاص آدمی سے ملاقات کے ملاقات بہت ہی حساس مسئلہ ہے، سوائے اس کے کہ ہم دعا لینے کے لیے آئے ہیں وہاں کچھ کام نہیں کرنے کا ہے، تشکیل تو کرنا ہی نہیں ہوتا ہے، ملاقات کرنے کے لیے آئے، دعا لینے کے لیے آئے ہیں. کارگزاری پوچھے تو کارگزاری سنا دینا، جماعت کہاں گئی تھی، کہاں سے آ رہی ہے، کیا حالات ہیں. بلکہ اگر پوچھے وہ صاحب تو پھر جماعت اپنے گشت کے دوران، ملاقاتوں کے دوران حالات جو دیکھے وہ جو ہے نا اس کو سنانے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے تھانوی کے سامنے یہی ہوا تھا نا، تم کام اطراف میں کام کرتے رہو، حضرت کے پاس دعا کے لیے جاتے رہو، اور ایک لفظ نہیں بولنا ان کو الا یہ کہ وہ پوچھیں. تو حضرت نے پوچھا کیا کام کر کے آئے، کہاں گئے تھے، تو پھر وہ تھانہ بھون میں گشت کی تفصیلات تھوڑی بتا دی وہ لوگ. جب تھانہ بھون میں گشت کی تفصیلات بتا دیے، جس میں ایسے لوگ ملے جن کو کلمہ یاد نہیں تھا. تھانہ بھون وہ بستی ہے جو خطبوں کی بستی ہے، حاجی امداد اللہ صاحب کی بستی ہے، حافظ عامر شہید کی بستی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کتنے سالوں سے چل رہی، حضرت محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا صاحب کشف المحجوب، وہ بھی ان کا بھی مزار وہی، بڑے بڑے لوگوں کی بستی ہے. وہاں پہ بے دینی کا کوئی تصور ان لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا، خیال بھی نہیں جاتا نا اصل میں، عموم غفلت کا. جب ان کو پتا چلا کہ اس بستی میں گشت کے دوران ایسے مسلمان ملے جن کو کلمہ یاد نہیں، حضرت اچھمبے میں آ گئے. کارگزاری رکھنا ہوتا ہے لیکن موقع سے رکھنا ہوتا ہے. تو خصوصی ملاقات کا بھی مذاکرہ ہونا، دینی اعتبار سے جو خصوصی ہے وہ دنیاوی اعتبار سے جب خاص ملاقات کے لیے جاتے تب بھی وہاں مرغوب نہیں ہونا ہے، وہاں متاثر نہیں ہونا ہے. وہاں کا فرنیچر پسند آ گیا وہ سو یہ کہاں سے لیے سوئے، یہ کتنے ملا سوئے، وہ نہیں بولیں گا کہ ہم تو مدعو بن گئے نا، پھر اس کے فرنیچر نے ہمیں دعوت دے دی، اس کے فانوسوں نے ہمیں دعوت دے دی، اس کے گھر کے ڈیزائن نے ہمیں دعوت دے دی، اس کا عالیشان گھر، اس کے گھر کے سامنے کی کھڑی ہوئی گاڑیاں، اور اس کا جناب والا رکھ رکھاؤ طور طریق، اس کے قالین، اس کے غالیچے، اس کے پردے، فلاں 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 فلاں. اسی لیے خصوصی ملاقات میں جانے والا آدمی چیزوں کو دیکھ کے متاثر ہونے والا نہیں رہنا، کوئی حیثیت نہیں رہنا اس کے سامنے چیز کی، مٹی میں ملنے والی چیزیں ہیں، کیا حیثیت ہیں. تو ہر چیز کا مذاکرہ ہے، خصوصی ملاقات کا مذاکرہ، عمومی ملاقات کا مذاکرہ، تعلیم ہے، تعلیم کا مذاکرہ. ہم لوگ روزانہ تعلیم کر رہے ہیں لیکن تعلیم کے آداب کا مذاکرہ بالکل نہیں ہوا اب تک بھی. اب کچھ ساتھی نئے ہوتے ہیں، کچھ پرانے ہوتے ہیں، کچھ کو پتہ ہوتا ہے، کچھ کو نہیں ہوتا، کرنا ہے. اتنا لمبا بھی نہیں کرنا ہے کہ تعلیم کا ٹائم ہی ختم ہو جائے. وہ پہلے بہت چلتا تھا نا، تعلیم کے مذاکرے میں بہت ٹائم لگ جاتا تھا ایک زمانے میں، بہت تقریر ہو رہی ہو رہی ہو رہی ہو رہی آداب تعلیم کی. آزما الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اندر سے بیٹھ کے ایک جماعت کا سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں چلمن میں سے کہ کیا کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں بول کے. تو وہ کتاب لے کے ہاتھ میں انہوں امیر صاحب جو ہے نا تعلیم کے آداب کے اوپر چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں. حضرت جھلا گئے اندر سے، چلمن ہٹا کے بولے تعلیم کا ادب ہے تعلیم شروع کر دو. تعلیم کا ادب یہ ہے کہ تعلیم شروع کر دو انہیں. اچھا آج کل الحمد للہ تعالیٰ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تو تعلیم کے دوران تقریر نہیں کر رہے ہیں. جو پرانے رہتے ہیں نا بعض قسم کے، جو نئی جماعت کو لے کے بیٹھتے ہیں ان کو پرانے کو بولے آپ ذرا تعلیم لے لو بولے تو انہیں ایک حدیث پڑھے جیسا کر کے اپنی تقریر شروع کر دیتا. اب چل رہی چل رہی چل رہی چل رہی، تعلیم میں تقریر نہیں ہوتی، تعلیم میں تعلیم ہی ہوتی ہے. تعلیم کے جو کام ہمارے پاس ہیں، تعلیم کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ کتاب پڑھنا ہے، किताब पढ़ने का तरीका भी मुज़ाकरे में आ जाना होता है कि हर किताब में से दो सफ़े तीन सफ़े मुसलसिल पढ़ना, फिर वहाँ पर निशान लगा लेना, फिर अगले दिन उसके बाद से पढ़ने की कोशिश करना। ज़रूरी नहीं है कि पाबंदी से पढ़े, लेकिन जमात जब अल्लाह के रास्ते में निकली भी है तो अगर उसके सामने तरतीब से चीज़ आ जाए तो अच्छी अच्छी बात है। तो एक हिस्सा तालीम किताबों के पढ़ने का होता है फ़ज़ाइल आमाल के, और दूसरा हिस्सा जो है वो तजवीद के हलके का होता है, और तीसरा हिस्सा जो है वो छः सिफात के मुज़ाकरे का होता है। तालीम में तीन हिस्से हैं। फिर ये कैसे होने का है, इसका तरीक़ेकार क्या है, इसका मुज़ाकरा होना है। मस्जिद में दाखिल होना, मस्जिद में दाखिल होने से पहले कुछ लिहाज रखना, मस्जिद में दाखिल होते ही कुछ लिहाज रखना, मस्जिद में जाने के बाद चीज़ों को रख रखाव, जो हिदायत के मौके पर जो देते ना तफसीली मुज़ाकरा 2.5-3 घंटों का जो होता है वो उस वक्त जहन में नहीं रहता। हमेशा जल्द इज्तिमा के आखिर में एक लंबा मुज़ाकरा होता है 2.5-3 घंटे का, और उसमें बताते कि जब मस्जिद में जाओ तो कैसा जाना, कैसे जाते क्या करना, सबसे पहले तहय्यतुल मस्जिद पढ़ना, फिर मशवरे के लिए बैठ जाना, दूसरी सारी मसरूफियतें नहीं रखना उस वक्त, और सामान जो है ना एक तरफ जमा के रखना, उसके ऊपर कपड़ा उड़ा देना, उसके बाद के अवकात में भी मस्जिद में सामान फैलाने नहीं, बहुत सी चीज़ें होती हैं मलहूज रखने की। मस्जिद में लोगों की आमद और रफ्त के वक्त को जहन में रखना, मस्जिद में लोगों के आने के वक्त में हमको मस्जिद में घर का माहौल नहीं देना चाहिए, इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। लोग नमाज के लिए आ रहे हैं, हमारी लुंगियाँ सूख रहे हैं, चड्डियाँ फैले हुए हैं, अपन भी लेटे हुए हैं, वो इधर फैला सोया हुआ है बिस्तर बिछा के, वो उधर फैला हुआ है, वो आदमी तहारत के लिए गया हुआ है, बिस्तर जैसे का वैसा खुला है, उसका ओढ़ना वैसे ही है। अब मस्जिद में आने वाला जो है ना सबसे पहले चिढ़ जाता, और ज़ाहिर है कि जमात आई बल्कि मालूम रहता, तो चिढ़ता किससे, वो जमात से चिढ़ जाता। तो मस्जिद में पहुँचने का मुज़ाकरा, पहले दुआ करके जाना, नियत क्या करना है, वो नियत क्या बनाना, वो नियत वो बनाना, जैसी नियत से दाखिल होते हैं वैसे असरात पड़ते हैं, दुआ करके जाना, जाते ही तहय्यतुल मस्जिद पढ़ना। अगर तहय्यतुल मस्जिद पढ़ने का वक्त है फ़िक़्ह हनफ़ी के अतबार से, ज़्यादातर हनफ़ी होते हैं, और अगर फ़िक़्ह शाफ़ी या दूसरे फ़िक़्ह के हैं और उनके पास गुंजाइश है तो जो भी वक्त में वो पढ़ना है पढ़ सकते हैं, उनके पास असर के बाद में भी पढ़ सकते हैं तहय्यतुल मस्जिद, उनके पास जुमा की अज़ान और इकामत होते वक्त में भी, वहीं खुतबा होते वक्त में भी पढ़ने का है, क्योंकि तहय्यतुल मस्जिद शवाफ़े के पास वाजिब है, हनफ़ के पास सुन्नत है, तो इस वजह से सुन्नत पढ़ने का जो टाइम है उसी वक्त पढ़ सकते हैं। तो फजर के बाद का वक्त अगर है मस्जिद में दाखिल हुई जमात जब नहीं पढ़ सकते, असर के बाद नहीं पढ़ सकते, गर्ज़ यह है कि तहय्यतुल मस्जिद पढ़ना, मशवरे के लिए बैठ जाना, दूसरे काम नहीं करना, जाते सबसे पहले जगह सेलेक्ट करना, ये करना वो करना, ये सब चीज़ें नहीं करने का है, एक तरफ रख दिया और नमाज़ पढ़ आके जो है ना बैठ के मशवरे के वास्ते, वो मशवरे में क्या क्या उमूर होते हैं वो सब उसका मुज़ाकरा है। तो असल में मुज़ाकरों का एक रोज़ाना एक वक्त होता है थोड़ा सा, उसमें खाने का मुज़ाकरा, जहाँ निकलें अल्लाह के रास्ते में तो कोशिश करना कि सुन्नत के मुताबिक खाने की आदत डालें, हर चीज़ आदत डालने पर है। अन्नफ्सु कत्तिफली इन अरदातहु इरतदा व इन फतमतहु इन फतम, नफ्स जो है ना वो बच्चे की तरह होता है, दूध पिलाते रहो तो दूध पीता रहता है, दूध छोड़ा के रोटी खिलाओ तो रोटी खाने लगता है, जो आदत डाले वो आदत लेना, ये नफ्स की खसूसियत है। तो अल्लाह के रास्ते में निकले हैं खाने के मुज़ाकरे में जो है ना, मुज़ाकरा होने पर चीज़ें याद रहती है और उसकी मशक होती है, खाने का मुज़ाकरा, तालीम का मुज़ाकरा, सोने का मुज़ाकरा, सोने के आदाब। सोना एक मुस्तकिल अमल है और सोने में बज़ाहिर कुछ काम नहीं है, लेकिन अगर सोना सही हो गया तो आधी ज़िंदगी तो ऐसे सही हो जाती, आधा तो सोते ना अपन। आदमी को जागना बाद में सीखना होता है, सोना पहले सीखना होता है, और सोना सीखने वाले लोग बहुत कम होते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ाब्ता सिखाते थे सोना, इदा अतैत मस्जिदक, हदीस शरीफ मशहूर, इदा अतैत मस्जिदक फतवद्दअ वुदूअक लिस्सलाह, जब तुम अपने लेटने की जगह पर जाने लगो तो ऐसे वजू करो जैसे नमाज के लिए करते हैं। वज़ू के सोने के मसनूनात में से वज़ू है, बहुत कम लोगों को यह बात मालूम है। हुज़ूर ने फरमाया कि ऐसे वज़ू करो जैसे नमाज के लिए करते हो, सोने के मसनूनात में से वज़ू है। फतवद्दअ वुदूअक लिस्सलाह सुम्मा इस्तजी अला शिक्किक अल-अयमन, फिर अपनी दाहिनी करवट पे लेटना, शुरू में दाहिनी करवट पे लेटो, दाहिनी करवट पे लेट सकते हैं, बाईं करवट पे लेट सकते हैं, चित लेट सकते हैं, औंधे नहीं लेट सकते। हमारी जमात में भी एक दो साथी हैं जो औंधे सोते हैं। औंधे सोना हराम है, औंधे सोना हराम है। चित सीधी करवट पे सोना सुन्नत है, बाईं करवट पे सोना और चित सोना जायज है। दर्जाबंदी रहती है, आम माल में दर्जाबंदी होती है। चित सोना, आप चित भी लेटे हैं कभी, लेकिन बहुत कम। बाईं करवट पे लेटना आपका जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन जायज़ है वो भी। दाईं करवट तो मसनून है, औंधा जायज़ नहीं। एक साहब को हुजूर ने औंधे लेटे हुए देखा तो अपने पैर से उठाया उनको, हालांकि हुजूर किसी को अपना पैर लगाते नहीं थे, ऐसा लात मार के उठाए और फरमाया कि जहन्नमियों का सोना है, अभी से क्यों एक्सरसाइज कर रहा है जाने की। उनको नहीं बोले, मैं ही बोल रहा हूँ, बात औंधा नहीं सोने का है। उसने फरमाया सुम्मा अस्तजी अला शिक्की कल अयमन, फिर अपने दाहिनी करवट पे लेटो लेटो। सुम्मा कुल, फिर उसके बाद में कहो अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक, या अल्लाह मैं अपनी जान आपके हवाले किया। क्योंकि सोने वाला आदमी मर रहा है, अन्नौम उख्तुल मौत, नींद जो है वो मौत की बहन है। आधी दूर तक तो जाते अपन, आधे काम बाकी रहता है। अल्लाह यतवफ्फल अनफुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, जो नफ्स मरता नहीं है सोने में, फयुमसिकु अल्लती क़ज़ा अलैहिल मौत, कुछ को अल्लाह मियाँ वहीं रोक लेते तब इधर तुम इधर आ गए, या आधे रास्ते तक आ गए थे तो इधर ही आ जाओ बोलते। फयुमसिकु अल्लती क़ज़ा अलैहिल मौत वही रुसिलु अल-उख़रा इला अजलिन मुसम्मा, दूसरे को छोड़ देते हैं, अन्नौम उख्तुल मौत। तो इसलिए सोने के वक्त में किस कदर पाकीज़ा तसव्वुर दिया गया, तालीम दी गई, असलम तो नफ्सी ही लेकिन अल्लाह मैं अपने आप को आपके हवाले किया। वज्जह तो वजही इलैक, और मैंने मुंह आपकी तरफ किया, अपने कल्ब का, अपने दिल का रुख, अपने जज्बात का रुख, अपनी नीयत का रुख, अपनी चाहत का रुख मैंने आपकी तरफ किया, आप ही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माहिरीन नफ्सियात जो है, इल्म नफ्सियात वाले, उन लोगों का कहना यह है कि सोते वक्त में जिन ख्यालात को, तबीयत को देख के आप सोते हैं, पूरे सोने के टाइम में वो चीज़ें तहत शोर में अपना काम करती रहती हैं। इसी वजह से सोते वक्त में एक सफ़ा सीरत का ज़रूर पढ़ा करो बोलते ना, उसकी वजह वही है कि जो सीरत का एक आध सफ़ा पढ़ के सोता है ना, तो तहत शोर का मतलब हमारे शोर का वो हिस्सा जो इस्तेमाल में नहीं होता, उसको तहत शोर कहते हैं, और हमारे शोर का एक हिस्सा जो इस्तेमाल में होता है, हमारे शोर का वो हिस्सा जो इस्तेमाल में नहीं होता वो नौ हिस्से होता है, जो इस्तेमाल में होता है वो एक हिस्सा होता है, नहीं इस्तेमाल होने वाला हिस्सा ज़्यादा होता है। हमारा शोर जो है ना वो बर्फ़ में, पानी के अंदर बर्फ़ के सील के वैसा रहता है, पानी में बर्फ़ के सील छोड़ेंगे तो एक हिस्सा बर्फ़ का पानी के ऊपर होगा और नौ हिस्से पानी के अंदर होंगे, वो तो नौ हिस्से को तहत शोर कहते हैं, वो एक हिस्से को फौक शोर कहते हैं। दिमाग असल में उसी एक हिस्से का काम करता है, बकिया का नहीं करता है, लेकिन एक अजीब बात यह है कि वो तहत शोर में जो वर्कआउट होता रहता है, काम जो चल रहा होता है, वो फौक शोर पर असरअंदाज होता है, नींद की हालत में तहत शोर काम में होता है। तो इसलिए सोते वक्त में अगर हुजूर की बात सोच के, हुजूर की बात पढ़ के, हुजूर के हालात पढ़ के सोएंगे तो हम नींद में रहेंगे, लेकिन तामीर सीरत होती रहती है, हमारी अंदर हमारी सीरत बनती रहती है, हमारे अखलाक बनते रहते हैं। तो इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शऊर अता फरमाया सोते वक्त में वो ये दिया, वज्जह तो वजही इलैकी, अल्लाह मैंने अपना मुँह आपकी तरफ कर लिया, अब मैं अपने आप को अल्लाह के हवाले कर रहा हूँ, नींद में से पता नहीं उठूँगा कि नहीं उठूँगा। अब अगर अभी भी मेरा मुँह अल्लाह की तरफ नहीं रहा, दुनिया की तरफ रहा, सामान की तरफ रहा, चीज़ों की तरफ रहा, मादियत की तरफ रहा, कितना बुरा अंजाम हो जाएगा खुदा ना खास्ता अगर उधर रोक लिया गया तो। वज्जह तो वजही इलैक व अलजा तो ज़ाहिरी इलैक, ये जुमला तो बहुत ही अजीब है, मैंने अपनी पीठ आपको लगाई, कैसा जुमला है देखो आप, क्योंकि हर आदमी के जहन में है कि मैं गद्दे पे लेटा, बिस्तर पे लेटा, मैं पलंग पे लेटा, हुजूर फरमा रहे हैं कि नहीं मैं आपके ऊपर ही लेटा, आप सहारा दिए बोल के मैं हूँ टिका हुआ, मैंने अपनी पीठ आपको लगाई है, मेरा ठिकाना आप हैं, मेरा सहारा आप हैं। सहारे का कांसेप्ट अल्लाह पाक की तरफ होना कि अल्लाह के बचाने से बचा हुआ हूँ, अल्लाह के सहारा देने से सहारे में हूँ, बिस्तर सहारा देने से सहारे में नहीं हूँ। बिस्तर तो कांटों का भी बन जाता है, बड़े बड़े गद्दे कांटों का बिस्तर बन जाते हैं। अल्लाह पाक है सहारा असल। वो अलजा तो ज़ाहरी इलैक ला मंजा अवला मलजा अमिन का इल्ला इलैक। कोई नजात की जगह नहीं है, कोई ठिकाने की जगह नहीं है मगर आप, इसलिए आप ही जाए पना है, आप ही जाए ठिकाना है, ठिकाने की जगह। आमन तो भी किताबी कल्लदी अनजलता, मैं ईमान लाया आपकी उस किताब पर जो आपने नाजिल फरमाई। व नबी कल्लदी अरसलता, और मैं ईमान लाया उस नबी पर जिनको आपने रसूल बना के भेजा है। फ़ैन मुत्ता मुत्ता अलल फितरा, अगर इस हालत में तुम्हारा इंतकाल हो गया तो तुम इस्लाम पर मरे। और बाद रिवायतों में यह भी आता है कि तुम्हें शहादत की मौत मिलेगी। सोना सिखाया गया। और इतना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वो करते थे कि सहाबे किराम मैं बताए हुए तरीके पे सो रहे कि नहीं सो रहे इसकी निगरानी करते थे। अल्लदी युरब्बिन अलमुरब्बी अल्लदी युरब्बिन्ना सभी सिगारिल उमूरी इला किबारिहा। मुरब्बी असल वो होता है कि लोगों की तरबियत करता है छोटी छोटी चीज़ों से, फिर बड़ों की बड़ी बातों की तरफ ले जाता है। इसको सोना ही नहीं आया तो जागना क्या आएगा? तो आप सोने की निगरानी फरमाते थे और साहबा को पकड़ पकड़ साहबा को बाज़ाब्ता इंफरादन दुआ सिखाते थे। आपको सिखाई, फिर आपको सिखाई, फिर आपको पूरा हल्का बना के सिखा लिया, या किसी को याद अलग से दिलाना पड़ रहा है तो उसको पकड़ के अलग से याद दिलाया। आप तशहुद याद दिलाते थे, आप ये दुआएं याद दिलाते थे, इसको छोटा काम नहीं समझते थे, हालांकि आप हैं। बड़ा सबक है इस बात में भी जिम्मेदार के लिए। दूसरे दिन एक सहाबी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ा, अरे मैं जो दुआया याद या जो दुआ याद कराया था याद कर लिए? जी हाँ याद किया, सुनाओ। आपने फरमाया सुनाइए। उन्होंने सुनाई, और वो अरब आदमी है, उनको अरबी आती थी। वो दुआ के अंदर एक जुमला है, आमन तो भी किताबी कल्लदी अनजलता के बाद वह नबी ये कल्लदी अरसलता है ना, उस नबी पर मैं ईमान लाया हूँ जिनको आपने रसूल बना के भेजा है। तो नबी में और रसूल में फ़र्क है। नबी साहिब वही होते हैं, साहिब तबलीग होते हैं, लेकिन रसूल साहिब शरीयत होते हैं, जिनको किताब मिलती है बाज़ाब्ता, सहीफ़ा मिलता है, किताब मिलती है। शरीयत मुस्तकिल्ला वाले को रसूल कहते हैं। रसूल बड़े होते हैं, नबी छोटे होते हैं, उनके अंदर भी नबी 100,000 से ज़्यादा है, रसूल 313 है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रसूल हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उन्होंने अपनी समझदारी में क्या करे, हुजूर को नबी नहीं बोलना चाहिए, रसूल बोलना चाहिए। नबी बोलने के बजाय आपको रसूल बोलना चाहिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए सुनाओ, उन्होंने सुनाया, वो पूरी दुआ सुनाई। आखिर में ये जुमला बोलते, बोले आमन तो भी किताबी कल्लदी अनजलता व रसूल कल्लदी अरसलता। और बोले हुजूर तारीफ़ करेंगे मेरी, मतलब बोले नहीं, मैं अपना जहन बता रहा हूँ। ऐसा हो सकता है इस किस्म का कोई ख्याल आया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन चौंके और फरमाए अहा कदा अल्लमतुक, मैंने ऐसे सिखाया था आपको, मैंने ऐसे सिखाया था आपको। जो मैंने सिखाया था वो बोलो। तो जो मैंने सिखाया वो बोलना है, तुमको नहीं मालूम है कि कौन सा लफ्ज़ क्यों इख्तियार किया जाता है। तो फिर उन्होंने फरमाया व नबी जी कल्लदी अरसलता, हाँ मैंने ऐसे ही याद कराया तुमको। मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी ने लिखा है कि जो पैगंबर अपनी उम्मत के एक एक फ़र्द की दुआ को, दुआ तक को, मुस्तहबात तक को सिखाता हो और उसकी निगरानी ऐसे करता हो, उसके लफ्ज़ों के हेर फेर को बर्दाश्त न करता हो, आप इससे अंदाज़ा फरमाइए कि कितने महफूज तरीके पर दीन दे दिया गया है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितने महफूज तरीके पर यह दीन उम्मत में मुंतकिल किया गया है, कितना काबिल एतमाद ज़खीरा है दीन का अमर पर, कितना भरोसे की चीज़ है। तो अगर सोना, सोने का मुज़ाकरा होता है, कोशिश ये करना है कि ऐसे ही सोएं जैसा कि हदीस में है। अब ज़ाहिर है कि अल्लाह के रास्ते में निकल के ही ये मशक हो सकती है, वो जोरू के बगल में तो ये सब मौका नहीं मिलता इसका, वहाँ पे कहानी दूसरी शुरू हो जाती है। तो जब अल्लाह के रास्ते में निकलते, अब्दुल फत्ता वो गुद्दा जो है ना, यहाँ आए हुए थे उसमें, हमारे पास कॉन्फ्रेंस हुई थी दारुल हैदराबाद में, हाँ थे आप उसमें, तालीम की और तरबियत की कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें अब्दुल फत्ता अबू गुद्दा आए थे। अब्दुल फत्ता अबू गुद्दा बहुत बड़ी शख्सियत है अरब की, रियाज यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं, और चूंकि वो शामी थे और हनफी थे तो कुछ चीज़ों में वहाँ पर अनबन हो गई उनकी, और फिर वो अल्बानी के साथ में भी झगड़ा चल रहा था, तो फिर उसमें से उनको निकाल दिया गया था वहाँ से रियाज यूनिवर्सिटी से, उम्मुल खुरा के वाइस चांसलर थे वो, वहाँ से जो है खर्च चले गए। तो बड़ी किताबें हैं उनकी, बहुत ही अजीब गरीब आलिम हैं, आलिम थे, अल्लाह पाक गरीक रहमत फरमाए, विशाल हो गया उनका। उनके साहिबजादे अमेरिका में होते हैं, एक आध मरतबा शायद हमारी मुलाकात भी हुई थी उनसे, तो वो यहाँ आए थे। तो उन्होंने बताया, तरबियत का जब उनवान था उनका तकरीर का, तो कहने लगे तरबियत के बारे में मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि मैं एक मरतबा 40 दिन के लिए इंडिया जमात में आया था। ये हज़रत यूसुफ सर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में, हज़रत यूसुफ सर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में 40 दिन के लिए मैं हिंदुस्तान जमात में आया था। और मैं आपको क्या बताऊँ कि उस खुरूज के ज़माने में मैंने कुछ ऐसी सुन्नतों की मशक़ की जो ज़िंदगी भर मैंने सोची भी नहीं थी। उस पर याद आया मुझे, बहुत सी सुन्नतें मालूम है, बड़े से बड़े मौलाना को मालूम रहते हैं, छोटे मौलाना को रहती है, बड़े को तो बड़े को, मगर ये कि मश्क का मौका नहीं होता है। सुन्नत है, अहमियत भी है, लेकिन आदत नहीं पड़ सकी, आदत नहीं डाला आदमी। तो अल्लाह के रास्ते में जब निकलते हैं हम, तो जो काम खाने का काम है, सोने का काम है, तालीम करने का काम है, गश्त का है, सब चीज़ों को जो है ना थोड़ा सीखने का एहतमाम करना है। जितना ज़्यादा बंदा अपनी ज़ात पर सीखने के लिए तवज्जो देगा, उसका उतना ज़्यादा उसको होगा, वो खुद कुछ सीखेगा, तलब उसके अंदर हो, अगर कोई सिखाने वाला मौजूद है तो उससे इस्तेफादा करे। इसी वास्ते अगर कुरान पाक सही करना है तो कोई मुजव्विद मौजूद हो तो उससे फ़ायदा उठाना है। दीन की दूसरी बातें सीखना है, दुआएं वगैरह सीखना है, इस किस्म की कोई चीज़ें सीखना है, उलमा मौजूद हैं, कदर कर लेने चाहिए। अब यह है कि हमको खुद जाके थोड़ा सा लगना पड़ता है, थोड़ा मिन्नत समाजत करनी पड़ती है, नखरे थोड़े उठाने पड़ते हैं बाद लोगों के, तभी जाके उन्हें कुछ देते अपने पास से, नहीं तो उन्हें बोलते तू भी सो जा मैं भी सो जाता हूँ, तू भी आराम कर मैं भी आराम करता हूँ, कहाँ भाई मसला, ज़रा हल्का फुल्का रहने दो, पहले ही रमज़ान चल रहा है, लड़ाई हो जाएंगे कहीं बोल के, तो कभी उधर गर्मी हो जाती है, कभी इधर गर्मी हो जाती है, मसला ही काम ख़राब हो जाता है। मगर ये कि मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह के ये जो जमात में जाना होता है मुख्तलिफ तबक़ात के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ में, उसकी वजह यही होती है, सिफात का तबादला है ये, जमात में अच्छी सिफात का तबादला करना है, अच्छी सिफात सीखना है। बाद लोगों को आप देखेंगे कि अल्लाह ने जी हैसियत बनाया हुआ होता है, पैसे वाले होते हैं, लेकिन जब तक उन्हें बोले नहीं मैं पैसे वाला हूँ, समझ में नहीं आते। तवाज़ो, आजिज़ी, खिदमत, छोटे बन के रहना, अंदाज़ा नहीं होता कि भैया अल्लाह पाक ने जो है कैसी कैसी सलाहियतें अपने बंदों में रखी हुई हैं। सीखना होता है, अच्छा इसको बोलते हैं तवाज़ो, ऐसा आदमी को मिटा के अपने आप को रहना होता है, ऐसा अपने को छुपा के रहना होता है। किसी आदमी में सखावत होती है, किसी आदमी में आजिज़ी वैसे ही होती है, और किसी आदमी के अंदर जो है ना हया वाला पहलू होता है, और किसी आदमी में शजाअत और बहादुरी होती है, अदब तवाज़ो किसी, अदब तमीज़ किसी में ज़्यादा होती है, बात करने का सलीका किसी में होता है, गुफ्तगू का सलीका, तकरीर का सलीका किसी के पास बहुत अच्छा होता है, तालीम का सलीका किसी के पास अच्छा होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। हमेशा शहद की मक्खी वाला रूल रखना, शहद की मक्खी फूल का जूस लेगी, शहद की मक्खी फूल का जूस लेगी, और सारे आलम वालों के वास्ते शिफा का सामान तैयार कर देगी, फी ही शिफा लिन्नास। कितने मील चल के जाती है, कितना लंबा सफ़र उसका बिचारी का होता है, सैकड़ों मील का सफ़र उसको करना पड़ता है, तब कहीं जाके छोटा सा शहद का हिस्सा जमा होता है उसका बिचारे का। ये कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में खुसूसन, वैसे तो हर हालत में भी, लेकिन अल्लाह के रास्ते में खुसूसन शहद की मक्खी वाली नज़र और शहद की मक्खी वाली चाहत रहना है, सेलेक्ट करना, अच्छी चीज़ लेने का ध्यान हमेशा रहना है, और सुवर वाली नहीं रहना, सुवर वाली नज़र नहीं रहना, खिंजीर वाली। खिंजीर का काम क्या है, सुबह उठते ही सबसे पहले कौन खरगोश बैठा हुआ है देखने को जाता हूँ, गंदी चीज़, उसकी नज़र गंदी चीज़ के ऊपर, बदबूदार चीज़, सड़ी हुई चीज़ खाना है, सिफली चीज़ खाना है, किस में क्या ऐब है, किस में क्या खराबी है, किस में क्या बुराई है, हर के पीछे झांक रहे हैं, हर एक की कमज़ोरी तलाश करने के चक्कर में उसी पर तबसरा हो रहा है, अच्छाई लेने के बजाय बुराई का लेना होता है। तो ये इसको खिंजीर की सिफत बताया जाता है, उसको शहद की मक्खी की सिफत बताया जाता है। जमात में निकल कर सिफात को लेना है, अच्छी सिफात को, اور اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف علاقے کے مختلف طبقات کے مختلف صلاحیتوں کے لوگوں کے ساتھ خروج ہوتا ہے. بس امیر صاحب بول رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ. ہاں انشاءاللہ پھر مذاکرہ ہوتا رہے گا. یہ دعا جن کو یاد نہیں ہے اگر کوشش کر لیں یاد کر لینے کی سونے کی, چونکہ آخر میں اس کا مذاکرہ ہوا نا, تھوڑا سونے کی دعا یہ یاد فرما لیں, وہ اللہم ابھی اس میں کام ہو تو آیا وہ تو یاد, وہ اماں بابا یاد دلائے سوئے, وہ یہ اپنے کو یاد کرنے کا ہے ذرا, تو یہ دعا بھی یاد کر لیں. اور یہ بہت پتہ مارو کام, میں نے دیکھا مشکل ترین ہے وضو کر کے سونا, وضو نہیں ہوتا سوتے وقت. اور یہ ایک عجیب بات ہے وضو کر کے سونے کی, وہی آدمی وضو کر کے ذکر کرتے ہوئے سو جائے, رات میں کسی بھی وقت آنکھ کھلے جو دعا اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے, یہ لکھا ہے کتابوں میں. اگر آدمی باوضو سو جائے اہتمام سے اور ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور آنکھ لگ گئی اس کی, تو چونکہ ذکر کرتے ہوئے سو گیا تو تین گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے جو بھی سویا یہ پورا کا پورا ذکر میں ہے, اور ایک ایسا ذکر جس میں ریاکاری کا احتمال نہیں ہے, جس کو ذکر کرنے والا خود بھی ذکر میں شمار نہیں کرتا, سو رہا تھا بھی میں تو. ایسی پیور عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مطہر صاف ستھری ہے, اس کے بعد جو دعا ہوگی تو اس کو تو قبول ہونا ہے نا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی وضو کر کے سوئے ذکر کرتے ہوئے, باوضو سوئے ذکر کر کے, اور آنکھ رات میں کسی وقت اس کی آنکھ کھلے تو اگر اس کی زبان پہ کوئی چیز سوار تھی فکر میں اس کے پریشانی کی اور دعا نکل گئی اس کی زبان سے اس بارے میں, وہ قبول ہو جائے گی. اتنا پاکیزہ عمل ہے یہ, اتنا معتبر عمل ہے, اور ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے نا وہ عبادت میں ہو جائے گا, ہماری نیند پر ثواب مل جائے گا, ہماری نیند ہمارا سونا سنت کے مطابق ہو جائے گا, ہمارے یعنی بہت تھوڑی سی محنت سے کئی گھنٹوں والا عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.